सुर्खियों में
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए उड़ान योजना के 9 वर्ष भारतीय विमानन क्षेत्र की प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एविएशन एंड टूरिज्म कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष गोयल, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान, ये सपना था हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। वर्ष 2014 में ही उन्होंने तय किया था कि आम आदमी कम किराए देकर भी हवाई जहाज की यात्रा कर सके। लगभग एक दशक की यात्रा हो चुकी है उड़ान योजना को यदि ठीक ठीक आकलन करें तो 9 वर्ष, और इन 9 वर्षों में करोड़ों आदमियों ने इस सेवा का लाभ उठाया है। आज हम उड़ान योजना की यात्रा पर ही मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, किस रूप में यह योजना आम नागरिकों को हवाई सेवा देने के साथ साथ छोटे शहरों में, टियर 2 टियर 3 शहरों में वहां के बुनियादी ढांचे को बदलने में कामयाब हुई हैं। एक ओर यात्रियों का समय बचा है, कम लागत पर वो यात्रा कर पा रहे हैं, दूसरी ओर छोटे शहरों का तेज गति से विकास हो रहा है। इसे समझने के लिए हमने आमंत्रित किया है इस कार्यक्रम में इस क्षेत्र के विशेषज्ञ और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विमानन और पर्यटन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष गोयल जी को। सुभाष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
बहुत बहुत शुक्रिया।
सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि हमारे ऐसे श्रोता जो उड़ान योजना से परिचित नहीं है, उन्हें उड़ान योजना के बारे में बताएं और बहुत संक्षेप में इसकी यात्रा कैसी रही, एक विशेषज्ञ के रूप में अपना अनुभव शेयर करें।
देखिए, जो भारत में एयर कनेक्टिविटी थी वो सिर्फ बड़े बड़े शहरों तक सीमित थी
जी।
तो मोदी जी ने जब टेक ओवर करा 2014 में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हवाई चप्पल वाला आदमी भी हवाई जहाज का सफर करेगा, उस विजन के साथ। क्योंकि उस टाइम पूरे देश में सिर्फ 60-70 एयरपोर्ट्स थे, आज 160 एयरपोर्ट से भी ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं, और छोटे छोटे शहरों में जहां पर पहले कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो हवाई जहाज पहुंच सकता है या हवाई जहाज की सफर हो सकता है, वहां पर भी उड़ान स्कीम जो थी वो उड़ान स्कीम इसलिए थी, ये वायबिलिटी गैप फंडिंग, यानी कि अगर एक हवाई जहाज जो छोटा हवाई जहाज है अगर वो छोटे एयरपोर्ट पे जाता है और वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, तो उसका जो एक घंटे की जो उड़ान है उसका मिनिमम उन्होंने 2,500 रुपए के करीब रखा था, और अगर उनकी DOC जो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो ज्यादा आती है, तो उसमें जो गैप होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के थ्रू वो फंडिंग उनको मिल जाती है। इससे क्या एडवांटेज हुआ है कि कम से कम छोटे छोटे जगहें, छोटी छोटी मार्केट्स, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो एक्सट्रीम साउथ में हो, मध्य प्रदेश में हो, जहां पर कि पहले लोग पहुंच नहीं सकते थे। नॉर्थ ईस्ट में तो मुझे याद है, क्योंकि मैं वहां का टूरिज्म एडवाइजर भी रहा हूं, कि वहां पर फल बेकार हो जाते थे क्योंकि वो पहुंच नहीं सकते थे मार्केट्स में
जी।
तो अब क्योंकि एयर कनेक्टिविटी वहां बढ़ गई है, तो ये जो कृषि स्कीम है उसके अंदर भी काफी सारी उड़ानें हुई हैं, और काफी सारे जो पिलग्रिम स्पॉट्स हैं वहां पर भी आदमी पहुंच गया है, और जहां जहां एयरपोर्ट बनते हैं वहां रोजगार भी बढ़ते हैं, गरीबी भी हटती है। क्योंकि जैसे एयरपोर्ट बना वहां पर आपको सिक्योरिटी चाहिए, वहां पर आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स चाहिए, वहां पर आपको पोर्टर्स चाहिए, वहां पर टैक्सी ड्राइवर्स चाहिए, और फिर वहां पर जब टूरिज्म भी बढ़ता है और ट्रेड भी बढ़ती है तो और एंसिलरी इंडस्ट्रीज जैसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, होटल्स आ जाते हैं, होटल आते हैं तो उनमें होटल में जो सब्जी सप्लाई करे को एयर कंडीशनिंग, तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है पूरी इकोनॉमी के ऊपर। और आज उड़ान स्कीम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। आज जो देश की इकोनॉमी हमारी मेजर इकोनॉमीज में वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसमें एयर कनेक्टिविटी इन रिमोट एरियाज जो कि छोटे छोटे कस्बे और गांव हैं, उड़ान स्कीम का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि वहां के लोगों को कनेक्टिविटी मिली, पहली बार उड़े, और इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है।
श्रोताओं, यहां हम आपको लिए चलना चाहेंगे प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य की ओर जिसमें उन्होंने एक समारोह में अपने सपने को साझा किया था।
2014 में जब देश ने मुझे अवसर दिया तो मैंने कहा था कि मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सके। इस सपने को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी था कि देश में नए नए एयरपोर्ट बनाए जाए। साल 2014 में हमारे देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, आज भारत में एयरपोर्ट की संख्या 160 को पार कर गई है। जब देश के छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनते हैं तो वहां के लोगों को हवाई सफर के लिए विकल्प मिलने लगता है, और इसमें भी पैसे की मुश्किल कम करने के लिए हमने उड़ान योजना शुरू की ताकि सस्ते में लोगों को हवाई जहाज का टिकट मिल पाए। उड़ान योजना की वजह से बीते दशक में लाखों लोगों ने पहली बार हवाई सफर किया।
यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे सुभाष जी कि आम आदमियों के लिए जैसे ये योजना है तो किराए को लेकर क्या इनकी नीति हुआ करती है? सीमित अवधि के लिए किराया कम होता है या पूरी यात्रा की दूरी के लिए किराया कम होता है? किस रूप में लाभ उठा पाता है?
नहीं, देखिए, सबसे ज्यादा किराए हैं जो नॉर्मल शेड्यूल फ्लाइट्स हैं, दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता मद्रास वगैरह जो जाती हैं
जी,
उसका एक ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, जिस ऑपरेशनल कॉस्ट का अबाउट 25-30% फ्यूल कॉस्ट होती है
जी,
जिसे कहते हैं डीओसी, डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये जितने भी फ्लाइट्स हैं वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती हैं
जी।
तो आपने देखा होगा जब डिमांड कम होती है तो एयर फेयर सस्ते हो जाते हैं, और जब डिमांड बढ़ती है किसी त्यौहार पे या किसी क्रिकेट मैच पे या किसी पे, तो एकदम जो किराए हैं वो स्काई रॉकेट कर जाते हैं। इसलिए हमने इंडस्ट्री की तरफ से भारत सरकार से अपील भी करी है कि एक अपर कैपिंग होनी चाहिए फ्लाइट्स की। पर जो उड़ान स्कीम है उसमें एक कैपिंग है, एक लिमिट है, और ये जो आम आदमी है
जी,
उसके बेनिफिट के लिए है, और ये उन एरियाज में जाती है जहां पर बड़े जहाज नहीं जा रहे, छोटे छोटे एरियाज हैं, और उन एरियाज में पूरी इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हो गई है एयर कनेक्टिविटी की वजह से
जी,
तो इससे बहुत फायदा हो रहा है।
श्रोताओं, यहाँ हम ये भी समझना चाहेंगे और प्रधानमंत्री के वक्तव्य को फिर से एक बार सुनना चाहेंगे। दूसरा वक्तव्य है उनका जिसमें उन्होंने विमानन उद्योग में भारत की स्थिति और कैसे भारत सबसे बड़ा बाजार बनता जा रहा है इसकी चर्चा की है।
हमारी उड़ान योजना की सक्सेस इंडियन सिविल एविएशन का एक गोल्डन चैप्टर है। इस योजना के तहत 15 मिलियन से ज्यादा यात्रियों को सस्ती एयर ट्रैवल की सुविधा मिली है। हमारी एयरलाइंस भी लगातार डबल डिजिट ग्रोथ हासिल कर रही है। भारत और विदेशी एयरलाइंस को मिलाकर हर साल करीब 24 करोड़ यात्री 240 मिलियन पैसेंजर्स हमारे यहाँ उड़ान भरते हैं, और 2030 तक ये संख्या 50 करोड़ 500 मिलियन पैसेंजर तक पहुंचने की संभावना है। साथियों, केवल आंकड़े नहीं है, ये नए भारत के पोटेंशियल की झलक है, और भारत अपने इस पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए फ्यूचरिस्टिक रोडमैप पर काम कर रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है।
यहाँ पर सुभाष जी, हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे विमानन उद्योग की ओर, और प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू बाजार बन चुका है विमानन के क्षेत्र में। यहाँ हम ये समझना चाहेंगे आपके माध्यम से कि बेहतर हवाई संपर्क ने छोटे शहरों और दूरदराज के इलाके के लोगों के जीवन में कैसा परिवर्तन लाया है, क्या बदलाव आया है उनके जीवन में?
आज इकोनॉमी हमारी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और आगे बढ़ रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज हमने यूके को और चाइना को भी और अमेरिका को भी, उनसे फास्ट हम डेवलप कर रहे हैं और धीरे धीरे हम उनकी तरफ पहुंच रहे हैं
जी।
और उसका कारण है कि रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी एंड एयर कनेक्टिविटी इस गवर्नमेंट ने इतनी फास्ट ट्रैक पे करा है कि 37 किलोमीटर्स ऑफ रोड हर रोज बन रही है और 16-17 किलोमीटर्स ऑफ रेल लाइन हर रोज बिछ रही है। और इसी तरीके से एयर कनेक्टिविटी इतनी बढ़ गई है, आज 160-170 एयरपोर्ट्स हो गए हैं जो कि 10 साल पहले से डबल एयरपोर्ट्स हैं
जी।
और हमारे हवाई जहाज भी, आप देखिए कि हमने लार्जेस्ट कमर्शियल एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, कम से कम 1000 एरोप्लेन्स हमारे पाइपलाइन में हैं आने के लिए, और हमारे एमआरओ इंडस्ट्री, और इसका एकदम मल्टीप्लायर इफेक्ट टूरिज्म पे, आज डोमेस्टिक टूरिज्म हमारा इतना बढ़ गया है, रूरल इकोनॉमी इतनी बढ़ गई है, और उसकी वजह से टायर 2 टायर 3 सिटीज में प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है। तो ये एविएशन जो है वो एक ब्लड लाइन है, एक लाइफ लाइन है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए, और इससे जॉब क्रिएशन भी होती है और गरीबी भी हटती है। आज जो हमारे लाखों लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ रहे हैं उसका कारण एयर रोल एंड रेल कनेक्टिविटी है, और उड़ान स्कीम ने ना इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करा है।
यहाँ यदि हम ये समझना चाहें आम श्रोताओं के नजरिए से कि हवाई अड्डों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ी है, इससे लाभ भी हुआ है, लेकिन चुनौतियां क्या आई इसमें? कई सारे रूट्स ऐसे रहे होंगे जहां पर कह लें कि अच्छी खासी यात्रियों की संख्या मिली होगी, कई सारे रूट्स ऐसे ऐसे होंगे जहां पर कि यात्री नहीं मिल रहे होंगे, तो सरकार ने किस रूप में जो विमानन कंपनियां हैं उनको या हवाई अड्डे से जुड़े हुए अन्य जो बुनियादी ढांचे हैं उनके विकास के लिए सहयोग दिया है?
देखिए, प्रॉब्लम्स चैलेंजेस हर चीज में होती हैं। जब भगवान भी बच्चा पैदा करता है तो टीदिंग ट्रबल्स होती हैं। तो इस स्कीम में भी ऑल टुगेदर 1100 के करीब प्रोजेक्ट्स थे, पर उनमें से मोर देन 50% अभी भी चल रहे हैं, सक्सेसफुल हैं। 550 के करीब ऑपरेशनल हैं रूट्स। कई रूट्स तो बहुत प्रॉफिटेबल कर रहे हैं, जैसे बिहार में एक दो रूट्स हैं और मध्य प्रदेश में एक दो रूट्स हैं जो कि काफी सक्सेसफुल हैं, और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इससे बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगा।
यहाँ यदि हम ये समझना चाहें आपके माध्यम से कि विमानन क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार को और क्या करना चाहिए जिससे कि ये आवाजाही और बढ़े, आम नागरिकों के नजरिए से भी और जो विमानन कंपनियां हैं उनके नजरिए से भी, क्या आप सुझाव देना चाहेंगे, अपेक्षा रखना चाहेंगे?
सबसे बड़ी अपेक्षा तो यही है कि उड़ान स्कीम के साथ साथ जो स्टेट टूरिज्म बोर्ड्स हैं
जी,
उनको भी स्कीम में इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि उस स्टेट की इकोनॉमी बढ़ रही है और स्टेट्स के पास काफी फंड्स हैं, और उनको भी जो एयर कनेक्टिविटी में नए प्लेयर्स आते हैं, जैसे एक दो प्लेयर्स जो उड़ान स्कीम में आए थे, छोटी छोटी एयरलाइंस हैं, उन्होंने ऑपरेशन बंद कर दिया क्योंकि वायबल नहीं थे, या तो उनको इंसेंटिव्स लेट मिले या फिर वहां पर जो लोग पहुंच नहीं सकते थे, रोड कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से सिटी तक या गांव तक जो भी था वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी इतनी नहीं थी। बट एक अंग्रेजी में कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो अब जैसे ही उड़ान में फ्लाइटें शुरू हुई तो वहां की ट्रांसपोर्ट सर्विस भी इम्प्रूव हो गई, टैक्सी सर्विस भी इम्प्रूव हो गई, और एयर कनेक्टिविटी की वजह से वहां की इकोनॉमी और ट्रेड में भी बड़ा फर्क पड़ा है।
यदि हम ये समझना चाहें कि उड़ान की शुरुआत हुई थी आम नागरिकों के नजरिए से कि उन्हें सस्ती दर पर हवाई यात्रा मिलेगी, ये लक्ष्य वास्तव में अपनी उस कसौटी पर कितनी खरी उतरी है?
मैं समझता हूं कि जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा खरी उतरी है, क्योंकि हमें उम्मीद थी सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी देने की, पर इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट जो इकोनॉमी पे हुआ है उसका तो मेजर करना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर जगह रोजगार बढ़े हैं, हर जगह उनकी ट्रेड बढ़ी है, उनकी इकोनॉमी बढ़ी है, और बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन लोगों में आई है कि वाकई देश एक फास्ट ट्रैक पे, एक तरक्की पे है।
यहाँ एक अगला सवाल हम उड़ान के पूरक सवाल के रूप में समझ लें कि उड़ान तो एक निश्चित कह लें कि विमानों की यात्रा थी, लेकिन विमानन के क्षेत्र में जैसे आवश्यकताएं बढ़ रही हैं या कह लें कि लोगों के पास धन आ रहा है, उसमें हेलीकॉप्टर सेवा का उपयोग या छोटे विमानों का प्रयोग उड़ान के अंतर्गत उसी के दायरे से थोड़ा आगे जाते हुए, क्या इस तरह की सेवा छोटी बड़ी कंपनियों ने शुरू की है?
बिल्कुल शुरू हुई है। पहले सिर्फ हेलीकॉप्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होती थी, पर अब बहुत सारी कंपनी है, जैसे माता वैष्णो देवी के लिए, बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए, चार धाम यात्रा के लिए बहुत सारी हेलीकॉप्टर कंपनीज प्राइवेट सेक्टर में भी आ गई है, और इसी तरीके से सी प्लेन्स भी अब आ रहे हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी के अंदर, और हेलीकॉप्टर और सी प्लेन्स को भी उड़ान स्कीम के अंदर लिया जा रहा है ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो सके।
श्रोताओं, सड़क यातायात, जल परिवहन और उसके साथ साथ हवाई यातायात आम से आम आदमी यानी कम आमदनी वाले लोगों के लिए भी सुलभ हो, साथ ही वायु से यात्रा करने पर समय कम लगता है, आपका धन भी कम लगे, इसके लिए सरकार की योजना रही उड़ान, और ये उड़ान तेज गति से उड़ रही है, हमारा विमानन क्षेत्र काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बस यहीं पर आप सभी श्रोताओं की ओर से हम अपने आज के विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष गोयल जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे उड़ान योजना के 9 वर्ष भारतीय विमानन क्षेत्र की प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एविएशन एंड टूरिज्म कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष गोयल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में